नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सभी विवादों का समाधान करने का पक्षधर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से भेंट कर राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए प्रदेश को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत वित्तीय पैकेज देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी को बंद करने से प्रदेश की वित्तीय हालत पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े राज्य आरडीजी बंद होने से उत्पन्न स्थितियों का सामना करने में सक्षम हैं, लेकिन हिमाचल की अर्थव्यवस्था इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान ऐसे राज्यों को आरडीजी का प्रावधान करता है जो अपनी राजस्व प्राप्तियों व खर्चों के बीच के अंतर को पाट नहीं सकते। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य व अल्पसंख्यक मामले मंत्री किरेन रिजिजू हिमाचल के अपने दो दिवसीय दौरे के बाद आज सुबह कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने अपने दौरे के दौरान चंबा जिले में अनेक विकास कार्यों के शिलान्यास किए। हवाई अड्डे पर पत्रकारों के सवाल पर किरेन रिजिजू ने कहा कि ईरान और इसराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने त्वरित कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान व इसराइल के बीच जारी संघर्ष को देखते हुए इन देशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं और मिशन मोड पर कार्य किया जा रहा है।
इसमें जो हमारा भारतीय लोगों को समस्या जैसे होते हैं उसको लाने में और संभालने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज तक होते आए हैं, कभी भी पहले ऐसा कोई सरकार नहीं करते थे, इतना व्यापक सहायता करते हैं। वो तो हमारे विदेश मंत्रालय, उसमें अपने अपने मिशन्स होते हैं हर देश में, वो मिशन के माध्यम से भारतीय लोगों को मदद करते हैं हमेशा।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले के कोटखाई इलाके में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन किए। इनमें कोटखाई में राजस्व रिकॉर्ड रूम, पशु औषधालय और टाहू कंथाड़ी पंचायत में नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण भी शामिल है। रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार ने स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोटखाई के ग्रामीण परिवेश में केंद्रीय विद्यालय खोलना एक बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश शुल्क में कई गुणा वृद्धि कर लोगों व श्रद्धालुओं पर भारी बोझ डाला है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि माता बालासुंदरी, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी और श्री नैना देवी जैसे मंदिरों में दर्शनों के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पहले प्रवेश शुल्क देना होगा। बिंदल ने कहा कि भारी भरकम प्रवेश शुल्क सही नहीं है और इससे पर्यटन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
बहुत बड़ी देन इस कांग्रेस सरकार की एंट्री टैक्स को मल्टीपल रेट में बढ़ाया गया है। कालाम से एंटर होने वाली गाड़ी जो 70 रुपए में अंदर आती थी, अब वो 170 रुपए में अंदर आएगी। लाखों लोग तीर्थयात्री माता बालासुंदरी के दरबार में आते हैं, लाखों तीर्थयात्री माता नैना देवी के दरबार में आते हैं, माता चिंतपूर्णी के दरबार में आते हैं, माता कांगड़ा के दरबार में आते हैं, और ये सारे क्षेत्र वो हैं जो बॉर्डर के साथ जुड़े हुए। सबसे पहले उसको बड़ी मात्रा में सड़क का टैक्स देना पड़ेगा।
कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में आज से गांधी शिल्प मेला शुरू हुआ, जिसमें देश के लगभग 18 राज्यों के कुशल शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। इस मेले में हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने 8 मार्च तक चलने वाले इस शिल्प मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों को एक ही छत के नीचे देश के विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने का मौका मिल रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।